الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے کامیاب زندگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی زندگی گزارے، آرام و آسائش، بہترین سہولیات، یہ تمام چیزیں اسے میسر ہوں، لیکن یہ ہر ایک کے حصے میں یہ چیزیں نہیں آتی، اس کی وجوہات ہیں۔ اور ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کاروبار میں کامیاب ہو جاؤں، اپنی جاب میں، نوکری میں کامیاب ہو جاؤں، اور دیگر چیزوں میں، تعلیم میں، اس میں بھی کامیابی، ناکامی، یہ دونوں چیزیں ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ اب کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے، اور کون ناکام ہونے کے بعد کامیاب ہوتا ہے، اور کون کامیاب ہونے کے بعد ناکام ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر آج ہم غور کریں گے۔ اور چار چیزیں ہم آپ کے سامنے ایسی بیان کریں گے کہ جن کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے، اور اسی سلسلے میں کامیابی کے متعلق ایک نہایت مجرب وظیفہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اور اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آئیے ذرا غور کریں کہ ہم زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اس چیز کو ہم مذہبی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر، ان دونوں لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کامیابی کیسی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مذہبی طور پر، اب آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، اور سب سے پہلی چیز یہی ہے کامیابی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی کام کو شروع کیا جائے، یعنی جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ہو، آپ کی جاب ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ۔ ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کرو، جو سبب پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ۔ جب آپ کام شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اس سے استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہوئے پھر اس کام کی ابتدا کریں، اور یہ یقین کر لیں کہ جس کام کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اور مقدس نام سے ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہ صرف یہ کہ پائے تکمیل کو پہنچے گا بلکہ اس کی انتہا بھی بہترین ہوگی۔ اب آئیے ذرا مذہبی لحاظ سے دیکھیں، پہلی چیز تو آپ نے سن لی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ، توکل، یقین اور اس سے استعانت طلب کرتے ہوئے کام شروع کیا جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پر فرض کی ہے اور ہم اسی کی طرف سے غافل ہیں، فجر پڑھ لی تو ظہر غائب، ظہر پڑھ لی تو عصر، عصر پڑھ لی تو مغرب، مغرب پڑھ لی تو عشاء، مطلب اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں مسجد وہ واحد مقام ہے کہ جہاں اعلان کر کے کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے، حیال الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حیال الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ ایک مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ مساجد سے یہ اعلان ہو رہا، اور کامیابی پانے والے کامیابی حاصل کرنے والے، کامیابی کی خواہش رکھنے والے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، فجر کے وقت اعلان ہو رہا ہے حی علی الفلاح سو رہے ہیں، ظہر کے وقت اعلان ہو رہا ہے تو اپنے کاروبار میں لگے ہیں، اسی طرح دیگر نمازوں میں. اگر اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی طرف ہم رخ کریں، اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیں، آپ یقین کریں کہ آدھی سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو وہ اپنی رحمت سے خالی نہیں لوٹاتا، ضرور ضرور عطا فرما دیتا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پانچ وقت نماز کی پابندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استعانت طلب کرنا، اس کی مدد طلب کرنا، اور اس کی ذات پر کامل اعتماد، بھروسہ، یقین رکھنا کہ وہی مجھے اس کام میں کامیابی دے گا. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز جو کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ ہے مثبت رویہ. آپ دیکھیں کہ انسان کا مثبت رویہ جو ہے اس کے متعلق کامیاب لوگوں نے، یعنی جو اس زندگی میں کامیاب ہو چکے اور کسی نہ کسی مقام پر پہنچ چکے، ان کا تجربہ یہ ہے کہ انسان کی تعلیم، اس کی ڈگریاں، یہ تمام چیزیں 15% اور اس کا رویہ یہ 50% اس کی کامیابی میں دخل اندازی کرتا ہے. وہ صحیح ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کر لی، آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، آپ کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں، فلاں فلاں یونیورسٹی سے، کالج سے آپ نے تعلیم حاصل کی، لیکن ان کا کردار صرف 15% ہے، 50% آپ کا مثبت رویہ ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے ماتحت بھی لوگ ہیں اور آپ کے اوپر آپ کے افسران بھی ہیں، اونر بھی ہیں اس کمپنی کے، جو جو بھی کہا جا سکتا ہے وہ ہیں. اب ان دونوں کے درمیان آپ ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ کے اوپر یعنی اس کمپنی کے اونر یا آپ کہیں افسران جن کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں. اب ان دونوں کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ صحیح ہونی چاہیے، مثبت رویہ ہونا چاہیے، تو وہ آپ کی ترقی میں، آپ کی کامیابی میں 50% کردار ادا کرے گا، اس کا دخل جو ہے 50% ہوگا. اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو حضرات کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں اور ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر، ان کی باڈی لینگویج درست ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کامیابی کے منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں. مثلاً ایک یہ ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے بھی، کہ کوئی اپنے افسروں سے کسی نے زبان چلائی، کسی نے ان کی عزت نہیں کی، کسی نے کام صحیح طور پر نہیں کیا، یا اپنے ماتحت لوگوں کو گالیوں سے نوازتا ہے اور بری باتیں کہتا ہے، غلط رویہ اختیار کرتا ہے، تو نہ اوپر والے اس کو پسند کریں گے اور نہ نیچے والے پسند کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو جائے گی. انسان کو چاہیے کہ جہاں سے اس کو رزق مل رہا ہے اس ادارے کا بھی ادب احترام کرے، جو اس کو دے رہا ہے اس کا بھی ادب احترام کرے. حقیقی رازق تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا ہے، تو اگر مجازی طور پر کوئی آپ کا مالک ہے، کوئی آپ کا افسر ہے جس کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کی عزت، اس کے ساتھ مثبت رویہ، اس کے ساتھ بیہیویئر، آپ کی باڈی لینگویج، یہ تمام چیزیں جو ہیں درست ہونی چاہیے. یہ دوسری چیز ہے کامیابی کے لیے، جو کامیابی میں دخل اندازی کرتی ہے. اگر آپ کا رویہ مثبت ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ ترقی کے منازل طے کرتے چلے جائیں گے. جن لوگوں کا رویہ درست ہوتا ہے، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ ترقی کے منازل طے کرتے چلے جاتے. بلکہ ہم نے ایک اس میں میگزین میں یہ پڑھا کہ ایک آدمی ایک جگہ کام کرتا تھا کہ جہاں پر جیسے یہ فریزر ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں کو فریز کیا جاتا ہے، اس قسم کی وہاں آلات تھے، مشینیں تھیں، एक रूम था जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था कूलिंग के एतबार से। उसका एक खास तरीका था कि जब वो आता था सबको सलाम करता था, जब जाता था तो सबको सलाम करता था। यानी सलाम करने में छोटे या बड़े की कोई तख़सीस नहीं थी। अगर कोई छोटा भी मिलता था उसे भी वो सलाम करता था, और जो अफसरान थे उनको भी सलाम करता था। ये उसका मामूल था। यानी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ लें कि इंसान का रवैया किस तरह उसे फ़ायदा पहुँचाता है। तरक्की की बात तो अलग है, अब आप ये देखें कि इस सलाम ने उसको कितना फ़ायदा पहुँचाया कि उसकी ज़िंदगी को बचा लिया। हुआ ये कि जब वो उस रूम में दाखिल हुआ, अच्छा उसकी ड्यूटी ये थी कि वो उन तमाम आलात को चेक करता था। खैर वो एक कमरे में दाखिल हुआ और वो कमरा ऐसा था कि जिसमें टेम्परेचर इतना हाई था कि आदमी चंद मिनट ही बस वो रह सकता था। तो उसमें जाने के लिए वो एक गर्म लिबास पहना जाता था, फिर वहाँ दाखिल होते थे, फिर बहुत सारी चीज़ें थी, मैं अभी तफसील उसकी बयान नहीं कर रहा। तो जब ये साहब वहाँ दाखिल हुए तो जो चाबी थी वो बाहर लगी रह गई और दरवाज़ा जो था वो बंद हो गया। अब इन्होंने अपना काम किया, जब बाहर निकलना चाहा तो दरवाज़ा बंद था। अब वो क्योंकि कमरा बिल्कुल एयर टाइट था तो लिहाजा आवाज़ तो बाहर जा नहीं सकती थी। इन्होंने सोच लिया कि अब मेरी मौत यकीनी है, जाहिर है आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, बाहर से कोई आएगा नहीं। और वक्त ऐसा था कि वो छुट्टी होने में सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट ऐसे टाइम बाकी था। ठंडक बढ़ती गई, जिसम इनका जाम होता गया, यहाँ तक कि ये बेहोश हो गए। अल्लाह ताला को इनको ज़िंदा रखना था, कोई ना कोई बहाना बनता है। तो वो जो चौकीदार था उसने देखा कि ये पूरी कंपनी जो है खाली हो गई, जितने अफसरान हैं वो भी चले गए, छोटे बड़े सब, और ये शख्स जो था ये नहीं आया। ये हमेशा जाते वक्त सलाम करता था, आज ये बग़ैर सलाम किए कैसे चला गया। यही सोच कर उसने एक चक्कर लगाया और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको चाबी बाहर लगी हुई नज़र आई। उसने कहा कि ज़रूर कोई ना कोई मसला है कि जो चाबी लगी है। उसने चाबी से ताला खोला, जब देखा तो वो बेहोश पड़ा था। उसको वहाँ से बाहर निकाला, फिर उस पर कुछ गर्माइश पहुँचाई तो उसको उसके साथ बहाल हुए, वरना वो वहीं पर ही फ्रीज हो जाता, मौत वाकई हो जाती। ज़ाहिर आदमी इतनी टेम्परेचर इतनी कूलिंग का वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो कहने का मकसद ये कि मुस्बित रवैया जो है, आपका बिहेवियर दूसरों के साथ, ये आपकी तरक्की में बड़ा किरदार अदा करता है और आपकी कामयाबी में। तो जो लोग मुस्बित किरदार अदा करते हैं, मुस्बित रवैया इख्तियार करते हैं, हमेशा कामयाब रहते हैं। अब आइए तीसरी चीज़ जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है, अपने अमल से कामयाबी हासिल करना। आमतौर पर ये देखा गया है कि हम माशरे को बुरा कहते हैं, माशरे में बुराइयां हैं, यहाँ पर बदमाशी है, यहाँ चोरी है, यहाँ पर धोखा देई है, हर दूसरा आदमी बदमाश है, हर दूसरा आदमी बेईमान है, बल्कि लोग आगे बढ़ के कहते हैं पूरा मुल्क ही बेईमान है, हम क्या करें, ऐसी जगह हम आ गए, इस किस्म की मायूसी की बातें। और उसके बाद कहते नहीं जी ऐसी जगह तो कामयाब हो ही नहीं सकते, ना कारोबार आदमी कर सकता है, ना जॉब आदमी कर सकता है। ये चीज़ जो है ये है मायूसी की। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जो हो सकता है हमने शायद गुज़िश्ता नशिस्तों में भी आपके सामने बयान की हो, जो लिखने और याद रखने के काबिल हैं। किसी ने कहा था, आप पूरे माशरे को ईमानदार नहीं बना सकते, पूरे माशरे को दुरुस्त नहीं कर सकते, अपने आप को दुरुस्त कर लें, अपने आप को ईमानदार बना लें और ये सोच लें कि इस माशरे से एक बेईमान कम हो गया। कितनी बड़ी बात है। हर एक को हम नहीं बना सकते, हम पकड़ पकड़ के कैसे कहेंगे भाई आप ईमानदारी करें, आप सच बोले, आप ये करें, कहना अलग बात है, लेकिन कर कोई नहीं सकता। सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करें ये कानून, खुद को दुरुस्त कर लें, हम ईमानदार हो जाएं और अहद कर लें कि आज के बाद से कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी गीबत नहीं करेंगे, कभी चुगली नहीं खाएंगे, कभी किसी का हक गसब नहीं करेंगे, कभी अमानत में खयानत नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करें और फिर सोच लें कि इस माशरे से एक बेईमान कम हो गए। अब आप ज़रा सा गौर करें कि अगर यही चीज़ माशरे का हर फर्द सोच ले तो पूरा माशरा दुरुस्त हो जाए। फिर तो कोई मसला ही ना रहे। हर आदमी अपने आप को दुरुस्त करने में लगा हुआ, दूसरों को तबलीग करना आसान है लेकिन अपने आप को दुरुस्त करना, अपने आप को तबलीग करना, यही सबसे मुश्किल काम है। तो इसमें क्या है कि अपने अमल से कामयाबी हासिल करना, खुद आप अमल करें, आप माशरे को ना देखें, आप खुद सीधे चलें, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत देगा। आप ईमानदारी से काम करें, अल्लाह ताला आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपके जॉब में बरकत देगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया, जो वक्त आपका है आने का जाने का, उसी टाइम पे आप पहुँचें, उसी टाइम पे आप निकलें, और जो जो टाइम आप ऑफिस में गुजार रहे हैं, फजूल बातों में ना गुजारें, फजूल कामों में ना गुजारें, जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया उस काम को पूरा करें, अपनी हलाल रोज़ी को हराम ना करें। अगर इस तरह हम करेंगे तो फिर आप देखेंगे यकीनन कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। उसकी वजह क्या है? अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका मालिक आपसे खुश होगा, कामयाबी इस तरह होगी कि आपकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा। ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी अपना काम वक्त पर करता है, ये आदमी वक्त पर आता है, वक्त पर जाता है। हाजिरी की बड़ी अहमियत है और हाजिरी की अहमियत हर जगह है, स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, यूनिवर्सिटी हो, खानकाह हो, या कोई इदारा हो, जाने का और आने का टाइम जो भी मुकरर किया गया है, अगर आप उसका लिहाज करेंगे तो फिर आप अपनी रोजी को हलाल करेंगे। जानबूझकर लेट होना, जानबूझकर काम ना करना, ये रिस्क हलाल को हराम करना है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखें। कुरान ने कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करे। अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि माशरा तो दुरुस्त है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कारोबार नहीं कर सकते, यहाँ हम ये नहीं कर सकते, नहीं, इसी माशरे में सही तौर पर रहकर दिखाइए, इसी माशरे में ईमानदारी करके दिखाइए, इसी माशरे में अमानत में खयानत ना करके और लोगों को सही दर देकर दिखाइए, तो फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला कितना करम फरमाता है। चौथी चीज ये है मुसलसल जिद्दोजहद, यानी कोशिश। ये चौथी चीज है जो कामयाबी हासिल करने के लिए और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग जरा सी नाकामी पर मायूस हो जाते। पहले तो एक बात अपने जहन में रखें कि कामयाबी और नाकामी दोनों जिंदगी में लाजिम व मलजूम, जरूरी नहीं कि हर चीज में आपको कामयाबी होती रहे, नाकामी भी हो, और जरूरी नहीं कि हर जगह नाकामी हो, कामयाबी भी हो। ये आपके अपने टैलेंट पर, अपनी कोशिश पर मुनहसर है कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं वजाइफ के लिए, तावीजात के लिए, बहुत से इतने मायूस के, जी हमने ये काम किया वो नहीं हुआ, फला काम किया वो नहीं हुआ, कारोबार किया उसमें नुकसान हो गया, जॉब की वहाँ से निकाल दिया गया, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें क्या है कि पहले आदमी को अपना एहतिसाब करना चाहिए, अपना मुहासबा, मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी। यकीनन इंसान की गलती होती है तभी नाकामी होती, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से माज़ल्ला हर चीज़ में नाकामी हो, ऐसा नहीं है। तो अगर नाकामी हो, सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि कहाँ मुझसे गलती हुई जिसकी वजह से यह नाकामी हुई, उस गलती को दूर कर लें, कामयाबी हो जाएगी। तो मायूसी तो वैसे भी मना है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, उसके करम से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। तो बाद लोग जरा सी नाकामी पर मायूस हो जाते हैं कि जी हमें कुछ नहीं करना है। हालांकि इसके बरस कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसलसल नाकामी के बावजूद मुसलसल मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद जारी रखते हैं। अब आप इस सिलसिले में आप देखें, सुल्तान महमूद गजनवी, सोमनाथ पर उसने 16 हमले किए और 16 हमलों में नाकामी हो गई, एक दो नहीं है, एक दफा फौज लेकर गया नाकाम हो गया, दूसरी दफा गया नाकाम हो गया, तीसरी दफा, यानी इस तरह 16 हमले उसने किए। और एक रिवायत यह भी आई, किसी ने वाकया लिखा कि एक दिन जब वो 16 हमले कर चुका था तो दरिया के किनारे बैठा था, तो उसने देखा कि एक चींटी निकली और ऊपर की तरफ आ रही थी कि फिसल गई, वो गिर गई, फिर दोबारा ऊपर चढ़ी फिर फिसल गई। यानी वो साहिल पे बैठा है और पत्थर पे चींटी चढ़ने की कोशिश कर रही। देखता रहा देखता रहा, कितनी मर्तबा वो गिरी, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी। जैसे ही गिरती थी फिर चढ़ती थी फिर गिरती थी, पत्थर गीला था चिकना था, फिसल जाती थी। ये देखता रहा कि ये क्या करती है। आखिर में यह हुआ कि वो कामयाब हो गई और ऊपर तक चढ़ गई। तो इसने सोचा कि जब एक छोटी सी चींटी ये कर सकती है तो मैं तो इंसान हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बशर बनाया है, इंसान बनाया, क्या मैं नहीं कर सकता। बहरहाल इसने कोशिश की और सबब यह हुआ कि हजरत शेख अबुल हसन खरकानी, जो उस वक्त के एक जलील कदर बुज़ुर्ग थे, किसी ने कहा कि उनकी खिदमत में जाओ। ये वहाँ पर पहुँचे, उनसे अर्ज़ की, उन्होंने अपना जुब्बा दिया, कहा ये सर पे रख के रात को दुआ करना, अल्लाह ताला कामयाबी अता कर दे। महमूद गजनवी ने रात को अपने सर पे रखा, दुआ की, मौला ये तेरे नेक बंदे हैं, बरगुजीदा बंदे हैं, इनकी वजह से मुझे कामयाबी अता फरमा दे, उनके वसीले से, उनके जुब्बे के वसीले से दुआ की, और उसके बाद जब हमला किया तो कामयाब हो गया। कहने का मकसद ये था कि 16 दफ़ा नाकाम होने वाला 17वें हमले में जो उसने किया कामयाब हो गया, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। अगर वो हाथ पैर छोड़ के बैठ जाता कि अब तो नहीं हो सकता, तो वाकई नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि मुसलसल जिद्दोजहद करने से अल्लाह तबारक व ताला कामयाबी अता फरमाता है। तो वो लोग जो मायूस हो जाते हैं नाकामी की वजह से, अब नाकामी क्या है इम्तिहान में हो, नाकामी क्या है किसी बिजनेस में हो, नाकामी क्या है किसी जॉब में नौकरी में हो, या किसी भी चीज़ में हो, मायूस कभी नहीं होने चाहिए। नाकामी के बाद फिर कामयाबी। इन नमाल उसरी युसरा, कुरान कहता है हर तंगी के साथ आसानी है, तंगी के बाद नहीं कहा, माल माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल के साथ, इन नमाल उसरी युसरा, यानी हर तंगी के साथ आसानी है। अगर तंगी आएगी तो उसके साथ ही आसानी भी आ जाएगी, तंगी आएगी तो उसके साथ ही फराखी भी आ जाएगी, गम आएगा तो उसके साथ ही खुशी भी आ जाएगी, बेरोजगारी होगी तो उसके साथ ही रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखो, मेहनत जारी रखो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो ये वो चार चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई कि ये अगर इंसान इन चार चीज़ों पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब हो जाएगा और कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा। अब आइए ज़रा इजमाली तौर पर हम उन चीज़ों को देख लें कि जो कामयाबी में रुकावट डालती हैं। सबसे पहली चीज़ है खौफ, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, हो सकता है मैं नाकाम हो जाऊं, हो सकता है सरमाया डूब जाए, हो सकता है ये हो जाए। ये खौफ अपने दिल से निकाल दीजिए, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके उसके नाम से शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हो। दूसरी चीज़ खुद एतमादी में कमी, आदमी को अपने ऊपर एतमाद होता है ना, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब बाद लोग हैं उनके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है, किसी बिजनेस में हाथ डाला, कहीं कोई काम शुरू किया, कहीं जॉब की, कहीं नौकरी, कोई भी काम उन्होंने किया, अब कमी है कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं ये काम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। अगर इंसान ये कहे कि मैं नहीं कर सकूंगा तो वाकई वो नहीं कर सके, और अगर वो ये बेड़ा उठा ले कि नहीं मुझे ये करना है और ये काम मैं कर सकता हूँ, तब अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी और अपने ऊपर एतमाद करते हुए वो कहेगा तो अल्लाह ताला की मदद होगी और वो काम हो जाए। तो खुद एतमादी की जो कमी है इसे दूर करें। तीसरी चीज जो कामयाबी में रुकावट डालती है वो है ईगो, गुरूर, तकब्बुर। बाज दफा आदमी ऐसा होता है कि वो किसी से मशवरा नहीं लेना चाहता, नहीं मैं सब जानता हूं, कारोबार शुरू कर दिया, ना किसी से पूछा ना कुछ किया। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वही काम आपका दोस्त कर चुका है, आपका मुखलिस है, आप उससे मशवरा कर सकते हैं, आप अपने बड़ों से मशवरा कर सकते हैं, आप अपने वालदैन से, अपने पीर व मुर्शिद से, अपने उस्ताद से, किसी से मशवरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस ज़ोम में होते कि नहीं हम जानते हैं, हम ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो हम है या मैं है, ये चीज़, ये ईगो है, गुरूर है, तकब्बुर है, ये इंसान को तबाह कर देती। हम जानते हैं, जो कहे कि मैं जानता हूं तो समझ लो कि वह कुछ नहीं जानता, इसलिए किसी भी काम के लिए मशवरा ज़रूरी है। आप मशवरा करें, कुरान का भी हुक्म है, हदीस शरीफ में भी आया, लोगों से मशवरा करो। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम खुद सहाबा से मशवरा फरमाते थे, हालांकि उनको मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बताने के लिए कि अगर ऐसे मामलात आ जाएं तो सब जो साइबुर राय लोग हैं उनसे आप मशवरा करें। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो कामयाबी में रुकावट डालती हैं, खौफ, खुद एतमादी में कमी और गुरूर तकब्बुर। इन तीनों चीज़ों को हटा दीजिए। जब इन तीनों चीज़ों को हटा दें तो फिर वो चार चीज़ें जो हमने आपके सामने बयान की, पहली चीज़ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा, दूसरी चीज़ मुस्बित रवैया, तीसरी चीज़ अपने अमल से कामयाबी हासिल करना, और चौथी चीज़ जोहद मुसलसल, यानी मुसलसल मेहनत करना, स्ट्रगल करना, तो फिर एक मकाम आता है, एक वक्त आता है कि इंसान कामयाब हो जाता है। अब आखिर में एक नहायत मुजर्रब वजीफ़ा हम आपको बता रहे हैं, यानी ये तमाम चीज़ें तो हमने आपको बता दी कि नमाज की पाबंदी भी करनी है, दीगर चीज़ें भी हैं, और उसके साथ साथ एक वजीफ़ा नहायत मुजर्रब है, और वो ये है कि या मुसब्बिबल असबाब, 11 तस्बीह फजर के बाद ये आप रोज़ाना पढ़ें, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। अब इसमें दो सूरतें हैं कि या तो आप फजर के बाद पढ़ें, फजर का टाइम बेस्ट है, सबसे बेहतरीन टाइम वही है, और अगर किसी वजह से उस वक्त पाबंदी ना हो सके तो इशा के बाद इसको अपना मामूल बना लें कि नमाज इशा अदा की और उसके फौरन बाद आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया। बात हजरात ये भी मालूम करते हैं कि जी हम मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो हम अदा करके फिर घर आकर पढ़ लें, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर मस्जिद में ही बैठ के आप पढ़ सकते हैं तो वहाँ पढ़ लें, और वहाँ से नमाज पढ़ के घर आकर इत्मीनान से, सुकून से, तमाम कामों से फारिग होकर, तो उस वक्त भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। या मुसब्बिबल असबाब, इसका माने ये है ए असबाब को पैदा करने वाले, तो कामयाबी के असबाब वह खुद ब खुद पैदा करेगा, कोशिश आपकी होगी, करम उसका होगा, मेहरबानी उसकी होगी, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी। तो ये वो तमाम अवामिल हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को कामयाब बनाती हैं, इसीलिए हमने इस मौजू का इंतखाब किया और ये तमाम चीज़ें बयान की। उम्मीद है कि अगर आप तमाम हजरात इन चीज़ों पर अमल करेंगे और जो वजीफ़ा हमने आखिर में बताया है इसको मुसलसल पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। आखिर में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व मनवालुहु अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबको कामयाब ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।